नमस्कार दोस्तों, मोबाइल वाणी से मैं आपका दोस्त योगेश, और हमारा आज का विषय है जातिगत जनगणना से मिलेगा वंचितों को अधिकार। भारत में पहली बार अंग्रेजों की सरकार ने 1931 में भी जातिगत जनगणना कराई थी, और उसी के आधार पर आज तक जातिगत आरक्षण दिया जाता है। आधुनिक भारत में सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या का पता लगाने के लिए अनेकों बार जनगणना तो हुई है, लेकिन जातियों के आधार पर नागरिकों की गिनती आज तक नहीं हुई है। आज हमारे साथ लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के महासचिव दिल्ली से अमन खान सर जुड़े हुए हैं। सर, मोबाइल लेने पर स्वागत सर आपका।
योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मोबाइल वाणी का भी
जी सर,
जी।
जातिगत जनगणना से मिल पाएगा वंचितों को अधिकार, क्या लगता है सर?
सर देखिए, जाति जनगणना से हिंदुस्तान की ये मांग है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जिससे कि ये पता चलेगा कि हिंदुस्तान में किस जाति का कितनी आबादी है। उस आबादी के अलावा उसमें की सरकार की जो भी फैसिलिटीज हैं उसमें उनकी कितनी भागीदारी है। सर इसलिए हिंदुस्तान में जाति जनगणना की बहुत ही आवश्यकता है जी।
सर, क्या देखते हैं कि हाल ही में गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई गई, उस दिन बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना पूर्ण कर ली। राज्यों के कदम को किस तरीके से देख रहे हैं आप? उनके खर्चे पर उन्होंने इस तरीके के कार्य किए।
सर, ये जाति जनगणना जो है ये केंद्र सरकार की होती है, केंद्र सरकार को करानी चाहिए। जो इससे पहले हुआ था 2011 में हुआ था, उसके बाद 2021 में किए थे, लेकिन कोविड की वजह से ये नहीं हो पाया।
जी
लेकिन जाति जनगणना जो हुआ, जाति जनगणना जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसमें एक कॉलम सरकार को ऐड कर लेनी चाहिए कि जाति जनगणना की भाई किसकी कितनी आबादी है। एक दूसरा इसमें सर यह है कि जो जाति गणना होती है सिर्फ वो कागज तक ही सीमित ना हो। क्योंकि क्या होते हैं, जो सत्ताधारी लोग होते हैं अपने बेनिफिट के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद वो भूल जाते हैं। तो जाति जनगणना हो तो जिसकी जितनी आबादी हो उसको उसी हिसाब से उनको अधिकार मिले। जैसे कहते हैं कि जिसकी जितनी ये आपकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी
जी
जी।
सर, क्या देखते हैं कि जातिगत जनगणना के आधार पर प्रतिनिधित्व करने के लिए कितना सहायक सिद्ध होगा सर जातिगत जनगणना?
देखिए योगेश जी, जाति जनगणना जो है, जो जनप्रतिनिधि की अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि ये देखा जाता है कि किस पॉपुलेशन में किसकी कितनी आबादी है क्षेत्र में, उस हिसाब के वहाँ के जनप्रतिनिधि को जो सत्ताधारी पार्टियां हैं जो उस कॉरपोरेट टाइप के लोगों को सेलेक्ट करके लाती हैं। क्योंकि वहां पे अगर समानता तभी आएगी जब समाज के निचले स्तर के लोग राजनीति में आएंगे। राजनीति में आएंगे तो वो अपने समाज और क्षेत्र की जुड़ी हुई मुद्दे को उठाएंगे। क्योंकि अभी राजनीति में जो सबसे ज्यादा सक्रिय जो लोग हैं वो कॉरपोरेट लॉबी के लोग हैं।
जी
जब कॉरपोरेट लॉबी के लोग आते हैं चुनाव के समय में, तो वो पैसे दे के, दारू दे के, हर अपने जो तन बन दल से अपना वोट हासिल करते हैं, और वो क्षेत्र के और अपनी जाति का उनसे कुछ उनका उद्धार नहीं होता है जी। दूसरा कि जो जाति जनगणना की हम लोग बात कर रहे हैं, जब वो अभी 2 अक्टूबर को जो बिहार सरकार ने जाति जनगणना शुरू किया, उसमें बिहार में ही कर्पूरी ठाकुर जी जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने 1977 में, तो उन्होंने ये लागू किया था कि बिहार के कुल आरक्षण के 12% अति पिछड़ी
जी
और 8% पिछड़ों जो निर्धारित किया था उनकी उसमें उसमें भागीदारी ये थी, आपकी क्या
जी
बोलते हैं उसको, हिस्सेदारी थी, मतलब उनको इतने परसेंट निर्धारित किया गया था।
जी
तो उसी फॉर्मूला को कर्पूरी फॉर्मूला भी कहा गया था, कहा जाता है। उन्होंने महिलाओं और स्वरों के लिए भी 3% के आरक्षण की बात कही थी
जी
जी।
तो सर, क्या देखते हैं कि कई लोगों का कहना है कि वर्गों को लेकर लोगों को तथाकथित वर्ग के लोगों को कब्जा होने जो अभी तक जो है समय, तथाकथित लोग कब्जे पर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या कम होने के बाद भी वो आज भी अपना प्रतिनिधित्व करते हैं। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, ये सच्चाई है कि जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनकी परसेंटेज आबादी कम है, उसके बावजूद भी सरकारी इसमें जो अवसर मिला उस पर उन लोगों ने कब्जा करके वो लोग बैठे हुए हैं। जैसे कि मेरे मुझे एक याद है, लखनऊ का एक विद्यालय है, कुछ एक हमारे मित्र से वहां पे डिस्कशन हो रहा था, तो 1948 से लेके 1920 तक का उन्होंने बताया था। तो उसमें जैसे नाम है मदन गोपाल मिश्र, ये शिवाराम मिश्र, के एल दीक्षित, बनारसी शरण श्रीवास्तव, गोरखनाथ द्विवेदी, आर सी दीक्षित, हरिहर नाथ तिवारी, जे पी शर्मा और एच डी शर्मा, नागेश्वर पांडे। तो क्या उस उत्तर प्रदेश में क्या और किसी जाति के लोग इस योग्य नहीं थे कि उस विद्यालय का प्रिंसिपल प्रधानाचार्य बन सके? तो ये एक सोचनीय यह है, और इसमें जनता को भी आगे बढ़ करके अपना उसी हिसाब से आने वाले समय 2024 में उनको वोट करना पड़ेगा, तब जाकर के उनकी आप भागीदारी मिलेगी।
जी सर, सर
जी
सत्ता हो या विपक्ष हो, दोनों को इस मुद्दे पर एक वक्त के लिए एक जगह पर आकर ये जो जातिगत जनगणना है इसको कराने की जो प्रयास है वो कहाँ तक नजर आ रहे हैं सर आपको?
तो देखिए, ये दोनों जो भी सरकारें हैं वो कह तो रही हैं लेकिन इसके फेवर में कभी नहीं रही हैं, क्योंकि उनको क्या है कि बरगला करके वोट के समय में वोट लेना है। जैसे कि अभी आपके जैसे बिहार की जो टोटल आबादी 13 लाख 13,07,25,000 310 है, उसमें से अत्यंत पिछड़ा 37%, 27% पिछड़ा, 19% अनुसूचित जनजाति, 1% 2% का सबसे अनुसूचित जनजाति वर्ग, 17% आपके मुस्लिम समाज के लोग, ऐसे लोग हैं। लेकिन क्या जो मौजूदा सरकार बिहार में अभी है, इससे पहले लालू जी की जो सरकार थी, क्या उन्होंने एससी एसटी ओबीसी के लिए क्या किया कि अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए उन्होंने क्या किया कि इतने लोग अभी तक पिछड़े हैं परसेंटेज में, और आज ये दोबारा सत्ता में आने के लिए ये लुभावने वादे कर रहे हैं या जनगणना कराए हैं?
सर,
जी
2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो ये मुद्दा है जातिगत जनगणना का, कितना प्रभावी देखते हैं सर जमीन स्तर पे?
देखिए, 2024 में जो सरकारों को है वो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बोला, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उसको पॉपुलेशन के जनसंख्या के हिसाब से उनको चुन करके वहां पे लोग भेजें, अपने पार्टियों में लोग ये दें जो कि आने वाले, क्योंकि जिस समाज का होगा वो उसी समाज का के बारे में ज्यादा विचार कर सकता है। क्योंकि अगर कोई कॉरपोरेट और कोई उस टाइप के लोग आएंगे तो वो अपने जो पैसे से धन बल से मजबूत लोग हैं उनके बारे में सोचते हैं, ना कि किसी गरीब के बारे में सोचेंगे वो। जी जब वंचित समाज आगे बढ़ेगा तभी जाकर के समाज में समानता स्थापित होगी।
तो ये
जी
थे अमन खान सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर जातिगत जनगणना से मिलेगा वंचितों को अधिकार इस विषय पर मोबाइल वाणी पर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की। अमन सर, मोबाइल वाणी को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपका मोबाइल वाणी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि ऐसे मुद्दों पे आप समय समय से चर्चा कर रहे हैं, इसके लिए आपकी सभी टीमों का धन्यवाद।
जी, मोबाइल ने सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।